Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radhe. Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiryet Nashta Praesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam, Skanda 7, Adhyay 1, Shlok Sankhya 48. Shri Yudhishthira Uvacha. Vidvesho Daite Putre. Vidvesho daite putre katamasin mahatmani katamasin mahatmani katamasin mahatmani bruhi me bhagavan yena Bruhi me Bhagavan yena Prahaladaschachuttamata Prahaladaschachuttamata Shri Yudhishthira Uvacha Videshito Bhadite Putre Videshito Daite Putre Katamasin Mahatmani Katamasin Mahatmani Bruhi me Bhagavan Yena ब्रूहि मे भगवान येन प्रह्लादश्चुतात्मता। श्री युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे मासीन महात्मनि प्रह्लादश्चात्मता। उवाच दैते पुत्रे,
युधिष्ठिर ने कहा विद्वेषः घृणा द्वेष दैते अपने प्रिय पुत्रे पुत्र के लिए खत्म किस प्रकार आसीत था महाआत्मनि महान आत्मा प्रह्लाद ब्रूहि कृपया कहे भगवान हे श्रेष्ठ मुनि ये न जिससे प्रह्लादस्य प्रह्लाद महाराज की अच्युत अच्युत से आत्मता आत्मीयता अत्यधिक आसक्ति। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा हे नारद मुनि हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रह्लाद महाराज के बीच ऐसे शत्रुता क्यों थी। प्रह्लाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने कृपया यह मुझे बताएं। तात्पर्य कृष्ण के सारे भक्त अच्युतात्मा कहलाते हैं क्योंकि वे प्रह्लाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कभी च्युत ना करने वाले भगवान विष्णु क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत अच्युत है। चूंकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं अथेव वे अच्युतात्मा कहलाते हैं। ओम अज्ञात मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक के पहला वाला श्लोक है इसका तात्पर्य है लेकिन फिर भी ये जो 47th श्लोक है इसके पहले वाला इस श्लोक को हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैंने सोचा कि ये पहले वाले श्लोक का जो उसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कह चुके हैं, अगर उसके ऊपर कुछ भी कहा जाए फिर से पुनरावृत्ति होगा, तो मैंने सोचा कि आज का ये जो श्लोक लिया जाएगा उसका पहले श्लोक के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये 47 श्लोक इस प्रकार है। वैरानुबंधेन तीव्रेण वैरानुबंधः तीव्रेण ध्यानेन अच्युत सात्वताम नीतो पुनर्हरेर पार्श्वम जगमतुर विष्णु पार्षदौ। तो इसका अनुवाद इस प्रकार प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे, इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। ये पूरा अध्याय जैसे कि आप जानते हो, द सुप्रीम लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीवन, भगवान की सम भावना, भगवान जिस प्रकार भगवद गीता में कहते हैं न मे द्वेष न प्रियः, इस जगत में ऐसा कोई मेरा द्वेष नहीं है, द्वेषी व्यक्ति नहीं है, ना मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, भगवद्गीता में अनेकों जगह भगवान अपनी जो ये समभावना किस प्रकार प्रकाशित करते हैं उसके उल्लेखन करते हैं, लेकिन उस समभावना कैसे उन्होंने उल्लेखन किया इस प्रसंग को, इस बात को ये अध्याय में समझाया जा रहा है। लेकिन उसके लिए क्या उदाहरण दिया जा रहा है, शिशुपाल और अन्य जो तीनों अवतार में रावण, शिशुपाल दंतवृक, रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, किस प्रकार भगवान ने उनको भी उद्धार किया, किस प्रकार उद्धार किया, भले ही वो लोग वैरानु बंदे ना, खास करके शिशुपाल इतना वैर भावना को दिखाया था भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, उनको उद्धार किया। खास करके ये जो पिछले श्लोक में किस प्रकार शिशुपाल भगवान की धाम में गए उसका वर्णन है। बहिरंगिक दृष्टिकोण से देखा जाए शिशुपाल को क्या प्राप्त हुआ, साउच मुक्ति प्राप्त हुआ। पिछली बार भी जब हम क्लास बता रहे थे कि साउच मुक्ति भी दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का साउच मुक्ति है वो ब्रह्म साउच कहा जाता है, ब्रह्म में लीन होना, दूसरा प्रकार का साउच मुक्ति है वो शरीर साउच यानी भगवान के शरीर में वो लीन होना। तो ये दोनों में ये शरीर साउच है वो और घोर माना जाता है और भयानक माना जाता है भक्तों के द्वारा। वैसे आप सब जानते हो 5 प्रकार का मुक्ति होता है, साउच मुक्ति, सारिष्ठा, सारूप्य, सालोक्य एंड सामीप्य। तो ये 5 प्रकार का मुक्तियों में जो साउच मुक्ति है वो भक्तों भक्त लोग नहीं चाहते। इतना कि क्या कहना, साउच मुक्ति की क्या कहना, बाकी जो 4 मुक्ति है वो भी नहीं चाहते, क्योंकि श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु का परिचय में भी भागवत का एक श्लोक को कोट किया गया है जहां कहा गया है कि धीयमानम न गृणन्ति विना मत सेवनम जना, धीयमानम न गृणन्ति, भगवान मुक्ति देना चाहते हैं भक्तों को लेकिन फिर भी वो चाहते नहीं चाहिए मुझे, क्यों, विना मत सेवनम, उसके अंदर सेवा की भावना नहीं है तो मुझे मुक्ति के क्या फायदा। तो इस प्रकार ये जो साउच मुक्ति है जो भक्त लोग जिनसे घृणा करते हैं उस प्रकार का साउच मुक्ति, उसमें भी घोर साउच को ये शिष्यपाल ने प्राप्त किया। लेकिन शिष्यपाल को इस प्रकार का साउच मुक्ति क्यों दिए भगवान ने, बहिरंगी दृष्टिकोण से सारे जगत को दिखाया जो व्यक्ति मुझे द्वेष करता है उसको भी मैं मुक्ति देता हूं, लेकिन शिष्यपाल दंतवृक्क कौन थे आखिर में, वो जय विजय थे, जय विजय होने के नाते भगवान के पार्षद थे, तो भगवान के पार्षद होने के नाते उनका जो सजा है वो समाप्त हो गया, उनको जो अपराध था 4 कुमारों के प्रति वो अपराध समाप्त हो गया। वो समाप्त होने के बाद भगवान एक योजना बनाए कि किस प्रकार मैं ये दोनों असुरों को अपने धाम में लेके जाऊं। तो बाहर से सारे जगत को भगवान ने दिखाया कि इनको साउच मुक्ति मिला, शरीर साउच मिला, जैसे श्री राधा गिरिधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैं,
तो लेकिन जब भगवान के शरीर के अंदर शिशुपाल प्रवेश किए तो भगवान स्वधाम में जब गए, कृष्ण स्वधाम भगते, उस समय उन्होंने क्या किया, तो आपको मालूम है कृष्ण कहाँ निवास करते हैं, गोलोक में निवास करते हैं। तो गोलोक में जाते जाते बीच में वैकुंठ आया, तो वैकुंठ में उधर शिशुपाल और दंतवक्र को उधर छोड़ दिया उन्होंने। वो ना गोलोक वृंदावन लेके गए और साथ साथ में चुपचाप उधर वैकुंठ में छोड़ दिए उनके। तो आप सबको मालूम है जो आध्यात्मिक जगत है उनमें बहुत सारे वैकुंठ लोक है, उन अनेकों वैकुंठ लोकों में जो सबसे सर्वोच्च वैकुंठ लोक है उसको गोलोक वृंदावन धाम कहा जाता है, जहां कृष्ण निवास करते हैं। कृष्ण तीन जगह निवास करते हैं, एक है गोकुल में और गोलोक में और मथुरा में और द्वारका में। ये आध्यात्मिक जगत में भी गोलोक है, ये जो हम लोग गोकुल जाते वृंदावन में भौम वृंदावन है, उधर गोलोक वृंदावन में भगवान निवास करते श्याम सुंदर के रूप में और वासुदेव कृष्ण के रूप में कृष्ण मथुरा और द्वारका में निवास करते हैं। तो बाकी अन्य जगह तो भगवान जो है अपना मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के रूप में अयोध्या में और अन्य अनेक वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और ये जो शिशुपाल दंतवक्र जो भी आए वो सब कौन है, जय विजय। जय विजय गोलोक के निवासी नहीं है बल्कि वैकुंठ के निवासी है। तो अगर वैकुंठ के निवासी है तो भगवान जब नारायण स्वरूप में अनेक अवतार लिए तो वो टाइम में उनको उद्धार कर सकते थे, उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ। ये जो है हमारी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का विशेषता ये है कि जब स्वयं कृष्ण आते हैं, जब स्वयं कृष्ण आके असुरों को वध करते तभी उन असुरों का उद्धार होता है। अन्य अवतारों में कोई भी अवतार भी क्यों ना हो भगवान का, उन अवतारों में कोई भी असुर का जब वध होता है वो असुर का उद्धार नहीं होता है। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का बहुत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को जब अन्य वैष्णव संप्रदाय के सामने प्रस्तुत किया जाता है उनको थोड़ा सा स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है। एक बार हम रामानंद संप्रदाय के कुछ भक्तों के साथ इस बात को कह रहे थे तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसे, उनको थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था स्वीकार करने में। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ विशेषता है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में जो अन्य वैष्णव संप्रदाय लोग भी वो स्वीकार नहीं करते उन, या दूसरे शब्दों में उसको प्रस्तुत नहीं किया गया उन सिद्धांत उन संप्रदायों में क्या है, उनमें से एक ये बात है। और दूसरा है कृष्ण नाम ग्रहण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, नामाभास से भी मुक्त प्राप्त होता है। और कुछ ऐसी बातें हैं जैसे राधा और कृष्ण को प्राप्त करना है तो गोपियों के पश्चिम में ही जाना है, और ये व्रज प्रेम प्राप्त करना है तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे कुछ सिद्धांत है जो गौड़ीय वैष्णव के परंपरा में आता है, कोई अन्य वैष्णव परंपरा में भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। उनमें से एक प्रमुख चीज ये है ओनली वेन कृष्णा कम्स इन फुल, कृष्णस्थ भगवान स्वयं जब उस रूप में आते जब असुरों को वध करते तभी होता है। तो ये शिशुपाल और दंतवक्र ये आखिरी अवतार था उनका, तीन अवतार उनको चॉइस दिया था भगवान ने, आपको क्या सात अवतार चाहिए मेरे भक्तों के रूप में, क्या तीन अवतार चाहिए आपको मेरे द्वेषी जनों के रूप में। तो उन्होंने कहा आपका विरह को हम सह नहीं सकते ज्यादा। पिछली बार हम इस क्लास में एक बात को बता रहे थे कि भक्ति का लक्षण को वर्णन करते नारद मुनि स्वयं कहते हैं कि भक्ति का परिभाषा, भक्ति नारद भक्ति सूत्र में अनेकों प्रकार की परिभाषाओं को कहने के बाद उन्होंने कहा, नारद मुनि ने कहा तद व्याकुलेति विरहेन व्याकुलेति, भगवान के विरह में एक प्रकार की व्याकुलता को अनुभव करना, इस व्याकुलता को भक्ति कहा गया है। तो भक्त लोग जो है भगवान का विरह ज्यादा समय के लिए नहीं चाहते, इसलिए ये लोगों ने कहा जय विजय ने आपका विरह को हम ज्यादा समय नहीं सह सकते, भले ही तीन जन्म ही क्यों ना हो, तीन जन्म ही द्वेषी के रूप में क्यों ना हो, तीन जन्म काफी है, सात जन्म हम सह नहीं सकते आपसे विरह। तो इसलिए उन्होंने तीन जन्म चुना था और भगवान ने एक बड़ा सुंदर प्लान बनाया कैसे मैं इनको वापस भगवत धाम में लेके जाऊं। ये लोग आए थे आने के वापस लेके जाने की योजना ये है, क्या योजना है, ये लोग मुझे निंदा करेंगे, इतना द्वेष करेंगे, खास करके शिशुपाल मुझे इतना वो गाली देगा, गाली देते देते मैं उनको मारूंगा। और उस समय देखिए आप पिछली बार भी इस बात को हम कह रहे थे कि शिशुपाल निंदा कर रहा था भगवान का, तो उस समय बहुत सारे जो लोग थे युधिष्ठिर की राजसूय सभा में राजसूयज्ञ की सभा में सब लोग हथियार लेके खड़े हो गए शिशुपाल को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मत मारो, आप मत मारो, मैं हूं ना। तो स्वयं भगवान ने मारा अपनी हाथों से, अपने सुदर्शन से। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था अगर ये लोग मारेंगे शिशुपाल को, बड़ा सा युद्ध होगा, खून खराबा होगा। अगर यज्ञशाला में खून खराबा हो जाएगा तो क्या होगा, तो यज्ञ भंग हो जाएगा, पूरा जो हो जा पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए भगवान जो है युधिष्ठिर के प्रति अपना जो प्रेम व्यक्त करने के लिए, उनका यज्ञ जरा सा भी दोष नहीं होने के लिए, भंग नहीं होने के लिए, भगवान ने कहा कि मैं उनको मारूंगा, पर्सनली मारूंगा। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना सुदर्शन से उनको शिशुपाल को मारा, ऐसे मारे कि शिशुपाल का गर्दन भी कटा और एक खून का एक बूंद भी उधर यज्ञशाला में नहीं गिरा। और इस प्रकार शिशुपाल सब देख रहे थे। आगे कहा गया है आगे शिशुपाल का वध में कि एक जगह कि नारद मुनि कहते हैं कि ये सारा जगत देखा था वो टाइम में, सभी लोग जितने भी असुर थे सभी लोग वो देखे कि किस प्रकार शिशुपाल का आत्मा जो है शरीर से निकला, निकल के कहां कृष्ण के शरीर में वो प्रवेश कर दिया। इट डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ कृष्ण, नॉट एफल्जेंस। ऐसा वर्णन आता है, खाली अघासुर का ऐसा वर्णन है, अघासुर का भी आत्मा निकला और कृष्ण के शरीर में पहुंचा, और कोई असुर का इस प्रकार कहीं वर्णन स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ता है कि आत्मा निकला और कृष्ण के शरीर के अंदर प्रवेश किया। और कृष्ण के शरीर के अंदर क्यों प्रवेश किया, तो कृष्ण जो है लेके जाना चाहते हैं, तो अपना शरीर में बैठा के लेके गए। अनेकों लोगों को वैकुंठ लेके जाने के लिए रथ आया था, अनेकों लोगों को लेके जाने के लिए बहुत सारा योजना बनाए, कुछ लोग अपना शरीर गए, लेकिन कृष्ण अपना शरीर को ही रथ बना के लेके गए, वो कहीं देखा नहीं गया। तो शिशुपाल को ऐसा बड़ा सौभाग्य मिला। लेकिन फिर भी ये जो है वैरानु बंदे ना, ये श्लोक को थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यानी पिछले वाला श्लोक बाद में इसमें आएंगे। वैरानु बंदे न तीव्रेण ध्याने न अच्युत सात्ताम। ये जो इन लोगों की जो भक्ति थी, किसका, शिष्यपाल और दंतप्रक और अन्य कंस का, इन लोगों का जो भक्ति था वो कैसा था, वैरानु बंदे ना, इट वॉज लाइक कंप्लीटली फिल्ड विथ हेट्रेड, दुश्मनी के साथ, मैं उनको मारूंगा, इनको इनको निंदा करूंगा। अस्तित्व में शिशुपाल का जो ईर्षा है वो हद हो गया था, ईर्षा का हद है। तो इस जगह एक आचार्य वर्णन करते हैं, भगवान ने ये शिशुपाल को इतना सहन किया, सारी सारे जगत को दिखाने, सबसे सहनशील, साथ साथ में ये जो फॉरगिविंग को क्या बोलेंगे, क्षमा, भगवान ने एक क्षमा का जो गुण है सारा जगत को दिखाने के लिए वो शिशुपाल को अपनी लीला में शामिल किया। और इतना ही नहीं, ये जो एडवेंचर है, भगवान जो चाहे वो हो जाता है कि नहीं, ऐसा कोई चीज है जो नहीं होता है। तो उनको मान लीजिए एक वस्तु किसी के पास है, तो भगवान केवल संकल्प मात्रेण मतलब केवल सोचने से, जस्ट बाई थिंकिंग इट विल हैपन। मान लीजिए उनको पानी चाहिए, आ जाता है, मिल जाता है, और उनको कुछ भी चाहिए तुरंत हो जाता है, संकल्प मात्र है ना, सत्य संकल्प सत्य काम, ही जस्ट हैव टू डिजायर इट विल कम। लेकिन भगवान तंग आ गए, मान लीजिए कोई आपको अगर बताया जाए आपको जो चाहिए मिलेगा, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन है। जो चाहिए वो मिल गया, तो बिना प्रयास का कुछ चीज मिल जाता है तो उस पर मजा नहीं आता है कि नहीं। तो इसलिए कुछ लोग प्रयास करके प्राप्त करना चाहते। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, एक ऑटो ड्राइवर था, तो वो उसे पूछा कि ऐसे बातचीत में मैंने पूछा कि आप कौन से गांव के हो, मतलब वो ये हम यूपी से है, इनका कि आप ब्राह्मण हो, इतना बड़ा रामायण की चौपाई बहुत कह रहा था, तो आप क्यों ऑटो चलाते हो, आराम से अच्छी तरह से ब्राह्मण का कार्य करो, ये सब क्या है। तब उन्होंने कहा हमको ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके गाँव में क्या आपका गुदगरी भी है क्या है, तो बोला कि हमको कोई नहीं, हम बड़े खानदान के हैं, बड़ा बड़ा बंगला है, ये है वो है, बड़ा संपत्ति है। तो मैंने कहा ऐसा है तो ऑटो क्यों चला रहे हो इधर, बोला वो सब मेरी बाप की कमाई है, मैं खुद कुछ करके दिखाना चाहता हूं। यानी कुछ प्रयास करके, मेहनत करके, कुछ ही मैं कुछ करूंगा, तो तब उसमें जो मजा है कुछ अलग है। तो भगवान को ऐसा मजा नहीं मिला। कुछ मैं छीन के लो, तो इसलिए शिशुपाल को उन्होंने शामिल किया। क्यों, अभी विवाह होने वाला शिशुपाल रुक्मिणी का, अभी रुक्मिणी जो है शिशुपाल की होने वाली है, वो टाइम में भगवान आएंगे और आके वो भी गुप्त रूप में आएंगे, आगे क्या करेंगे, रुक्मिणी को हरण करके लेके जाएंगे। भगवान को कोई चीज हरण करने की जरूरत है, सब कुछ उनका ही है, लेकिन हरण करके जो भोगने की जो मजा है वो भी प्राप्त होना चाहिए भगवान को। तो इसलिए ये जो लीलाओं में ये जो विविधता है ये भगवान क्यों प्रकाशित करते हैं, इसलिए प्रकाशित करते हैं ताकि वो लीला पुरुषोत्तम है। और इस लीला में सहयोग देने वाले शिष्यपाल और दंत भक्त या अस्तित्व में जय विजय है उनको भगवान ने बहुत इतना प्रेम से उद्धार किया। कैसे उद्धार किया उन्होंने, अपना स्वस्थ शरीर में। सारा जगत को तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है इनको साउच मुक्ति प्राप्त हुआ, लेकिन अस्तित्व में साउच मुक्ति नहीं, अपना ही शरीर को भगवान ने रथ बनाया और शिष्यपाल को लेके गए। तो इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णस बॉडी एंड नारायणस बॉडी, देयर फोर ऑल दो दे विजिबली एंटर्ड द बॉडी ऑफ कृष्णा, दे एक्चुअली री एंटर्ड वैकुंठ लोका एज द डोर कीपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में प्रकट होते हैं उनके शरीर में सारे अवतार भी होते हैं, उनके शरीर में सारे अवतार होते हैं। तो इस जगह एक बहुत महत्वपूर्ण बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोग खास करके दक्षिण भारत में इस प्रकार की भ्रांति है कि वो सोचते हैं कि विष्णु का अवतार है, विष्णु कहीं है ऊपर और कभी वो राम के रूप में आते हैं वो विष्णु बन जाते हैं, बाद में कभी नरसिंह के रूप में आते हैं बाद में विष्णु बन जाते हैं, ऐसा लोगों के मन में धारणा है। तो इसलिए कहते हैं कि विष्णु ने 10 अवतार लिया और इस अवतार की लिस्ट में कृष्ण को भी डाल देते हैं। लेकिन अस्तित्व में अवतार की लिस्ट में कृष्ण का नाम ही नहीं है, क्योंकि अवतार का जो पूरा आचार्य है कौन है, अवतार अवतार का चरित्र वर्णन करने में वो कौन है, जयदेव गोस्वामी है। जैसे हम लोग तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम ये गाते हैं, ये कहां से है, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंदम से है। तो वो दशावतार स्तोत्र में कृष्ण का नाम नहीं है, देयर इज नो नेम ऑफ कृष्ण। ये लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रांति है, वो सोचते हैं कि दशावतार में कृष्ण का नाम आता है। इन द 10 इनकार्नेशंस लिस्ट देयर इज नो नेम ऑफ कृष्ण एट ऑल। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम सारे अवतारों में, केशव द्रीता मीन शरीरा, केशव कृष्ण है, वही केशव जो है दशवित रूपा, जय 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 जगदीश हरे। तो आखिरी स्तोत्र में दशावतार स्तोत्र के 10 स्तोत्रों के अंत में शुणु सुखदम शुभदम भवसारम केशव द्रीता दशविद रूपा जय जगदीश हरे, वही कृष्ण 10 रूपों में उन्होंने प्रकट किया। तो ये भी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का एक विशेषता ये है, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उनके अंदर सारे अवतार निहित रहते हैं, उनके अंदर राम नरसिंह वामन सारे जो रूप है उसके अंदर निहित होते हैं। इसलिए जो भी अवतार इस जगत में प्रकट होता है प्रकट होते हैं तो वो टाइम में उनके अंदर विष्णु जो है, कौन विष्णु है, क्षीरोदाक्ष विष्णु, वो निश्चित रूप में उनके अंदर रहते हैं, वो निहित रहते हैं। तो इसलिए जब भगवान अपने धाम में गए तो जहां जहां जो जो लोक से ऊपर जाते हैं वो जो अवतार है वो अपने अपने स्थान को ग्रहण करते हैं और साथ साथ में उनके पार्षद भी उधर अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण स्वधाम भगते जा रहे थे, वैकुंठ को पार करके गोलोक में जब जा रहे थे तो क्या हुआ, उनके शरीर के अंदर जो नारायण है वो भी वैकुंठ चले गए और साथ साथ में उनके जो पार्षद है कौन, जय विजय, वो भी अपना द्वारपाल अपने स्थान को ग्रहण कर लिए। तो इस बात को स्पष्ट रूप में, या स्पष्ट तो नहीं अप्रत्यक्ष रूप में इस श्लोक में वर्णन किया गया है। जैसे श्री विश्वनाथ ठाकुर इस बात को कहते हैं कि हरेर नारायणस्य पार्श्वम जगा जगम तुरिति, जगम तुरिति, जगम तुरिति मतलब जगम मतलब गए, कहां गए, कहां नारायण लोक में ये दोनों पहुंचे। तो इसी बात को श्री विश्वनाथ ठाकुर का जो बात है श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं। तो मुख्यतः आज हमने ये जो पहले वाला श्लोक, इसके पहले वाला श्लोक में दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को चर्चा किया, एक वैराणु बंदे न कि ये जो जय विजय, भले ही वो तीन असुरों का रूप या तीन अवतारों में असुरों के रूप में व्यवहार किया, वो व्यवहार करके भगवान की लीलाओं में उनको सहयोग दिया, इसकी वजह से भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि जय विजय को बहिरंगिक दृष्टिकोण से दिखाए कि मैं साउच मुक्ति दिया, लेकिन अंतरंगिक दृष्टिकोण से अपना शरीर को ही एक रथ के रूप में उनको इस्तेमाल किया, बना के वो लेके गए, एक बात। दूसरी बात, जब वो लेके जा रहे थे तो तो क्या किया उन्होंने, गोलोक वृंदावन धाम तो लेके नहीं गए, उनको कहां लेके गए, उनको सीधा वैकुंठ धाम में जहां उनका निहित पोजिशन था उधर छोड़ दिए, जहां सारे जो अवतार है वो सब उनके अंदर निवास करता है। तो मुख्यतः सिद्धांत के रूप में आ जाए दो बहुत महत्वपूर्ण बात कि कृष्ण जब आते हैं स्वयं तभी असुरों का उद्धार होता है और कृष्ण के शरीर में सारे अवतार निहित होते हैं, जो दो विशेषता गौड़ी वैष्णव सिद्धांत का इस श्लोक से हमको उद्धृत होता है। तो चलते हैं आज का श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक जैसे युधिष्ठिर महाराज ये पूरा प्रवचन को सुने, नारद मुनि और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है, अभी युधिष्ठिर महाराज ने प्रवचन को सुना, सुनते उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता। अभी देखिए भक्तों के मन में लीला के प्रसंग में प्रश्न उत्पन्न होना ये स्वभाव है। अस्तित्व में जब कोई चीज को सुना जाता है तो उस समय भक्तों के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो लीला का एक तो पहले कहा गया लीला का आस्वादन नहीं हुआ समझ लीजिए, दूसरा आगे की लीला का वर्धन जो है वो नहीं हो पाएगा, एकदम बेरस हो जाता है। असलियत में जैसे मान लीजिए कोई सब्जी है, तो सब्जी भले ही उसके अंदर कितना भी ताकत हो, पुष्टिकर हो, रसात्मक हो, कुछ भी हो, अगर मसाले के बिना कुछ अच्छा लगता है वो नहीं अच्छा लगता है। वो बॉइल्ड सब्जी खाने के लिए देंगे तो नहीं हो पाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाला जाए तो एकदम स्वादिष्ट हो जाता है कि नहीं, वो आप अच्छी तरह से खा सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है भक्तों के द्वारा, अनेकों श्रोताओं में कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, वो जो जिज्ञासा है भगवान की लीलाओं का खटाक का वर्धन के लिए वो मसाला समझ लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो आप देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो प्रश्न है, उसके बाद अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। खास करके इस बात को मैं कहता हूं कि भगवान ने दूसरे अध्याय को कहा, पूरा दूसरे अध्याय में पूरा भगवद गीता को समाप्त कर दिया, उसके बाद अगर अर्जुन तीसरे अध्याय में प्रश्न नहीं पूछे होते तो भगवद गीता खाली दो अध्याय का हो जाता, ओनली टू चैप्टर्स, और हमारे लिए आसान भी हो जाता। फिर भी अच्छे भक्त लोग इस प्रकार नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि और वयम तु न वृद्धुत्प्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे श्रृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु प्रदे प्रदे। भक्त का स्वभाव होता है कि वो क्या करना चाहता है, भगवान के बारे में और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है। तो दसवां स्कंद में भी ये प्रश्न आया था कि लोगों ने प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, मैं भगवान के विषय में ये बातें सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ? अब बताओ बलराम जी का गर्भ का स्थानांतर हुआ कुतो सानंत बिना शरीर को त्याग किए, वो उनका गर्भ का स्थानांतर कैसे हो गया? तो ये बाद में उन्होंने पूछा कृष्ण ने क्या किया, जन्म लेने के बाद वो मथुरा से गोकुल क्यों गए, गोकुल से वृंदावन क्यों गए, वृंदावन में क्या क्या लीला किया, वृंदावन से उनको मथुरा क्यों जाना पड़ा, मथुरा में उन्होंने क्या क्या लीला किया, और अंत में कहते हैं कि मैंने जो भी पूछा है वो सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए, और भाई जो नहीं पूछा उसका भी जवाब दो। अगर वैसा है तो पहले बोल देता कृष्ण के बारे में सब कुछ कहिए। वही शुड हैव आस्क्ड दैट, क्यों उन्होंने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि जब एक विशेष प्रश्न पूछा जाता है तब वक्ता को लगता है कि सच में सुन रहा है। अगर पूछेंगे किसके बारे में सुनना है, बस कथा सुनाइए, अगर बोला जाए इसका मतलब है उनको ना समझ में आएगा आया है ना आने वाला है, क्योंकि ऐसे बस टाइम पास के लिए बैठा है। तो इसलिए एक विशेष प्रश्न पूछने के बाद ये बोल सकती है आप और भी कहिए, जो मेरे मन में नहीं आ रहा है उन बातों को भी कहिए। तो अभी युधिष्ठिर महाराज दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये श्लोक में पूछ रहे हैं, तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अभी इस श्लोक में शिशुपाल दंतवक्त का आया और रावण कुंभकर्ण का बात आया, थोड़ा सा कंस का भी आया, लेकिन ये सब आया है, लेकिन इधर युधिष्ठिर महाराज का स्पेसिफिक क्वेश्चन था किसके बारे में, भगवान का जो विशेष जो लीला है क्या है, वो हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नरसिंह रूप का लीला है। तो एक जगह मैं इस बात को श्रवण कर रहा था कि ये नरसिंह लीला का विशेषता क्या है भागवत के दृष्टिकोण से। विशेषता यह है, अगर देखा जाए भगवान की अनेक अवतारों में, बहुत सारे अवतारों में, तो कुछ समय के लिए रहे, जैसे कृष्ण 125 साल तक, भगवान रामचंद्र का भी बहुत लंबा समय तक, कितना कितना साल था रामचंद्र ज्ञान में, तो वो बहुत लंबा समय तक रहे। और भी कोई भी लीला था, आए कुछ समय के लिए, बहुत कुछ समय था उनको समय के लिए प्रकाशित किया उन्होंने लीला, प्रकट लीला, यानी भगवान की अवतारों का जो प्रकट लीलाओं में सबसे कम समय के लिए प्रकट होके अप्रकट होने की जो लीला क्या है, नरसिंह लीला। लेकिन उनका जो वर्णन है भागवत में, सबसे लंबा चौड़ा वर्णन कौन सा लीला का है, यही लीला का है, नरसिंह लीला। भगवान रामचंद्र का लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है भागवत में, और कृष्ण का तो है ही, तो वो तो अलग बात है क्योंकि कृष्णस्थ भगवान से अवतार कथाओं की बात कर रहे हैं, तो अन्य जितने भी अवतार है उनका वर्णन है, लेकिन सबसे लंबा चौड़ा वर्णन अगर बोला जाए, टोटल 9 अध्याय है, 9 chapters डेडिकेटेड ओनली फॉर नरसिंह। और ये भी है, दूसरा महत्व ये है कि भगवान नरसिंहदेव का जो लीला है, ये इसका विशेषता ये है कि मान लीजिए भगवान कृष्ण का प्राकट्य है, वो प्राकट्य के पीछे कुछ बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड ये था कि भूमि माता दुखी थी, वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी जाके सारे देवताओं को लेके गए, पुरुष सूक्त का उच्चारण किए, और भगवान ने कहा मैं जानता हूं आप कौन आए, क्यों आए हो, आप चिंता मत करो, इन लोगों को बोलो जाके प्रकट हो जाओ मेरे पार्षदों को, आपने अलग अलग स्थानों में अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहो, मैं आ रहा हूं। तो यानी उसके पीछे बड़ा प्रिपरेशन था, लेकिन ये जो भगवान नरसिंहदेव का जो प्राकट है उसके पीछे क्या प्रिपरेशन था, कुछ नहीं, केवल आतुरता था, बस मैं प्रकट हो जाऊं, अगर मैं प्रकट नहीं हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा भक्त का जो वाणी है वो असत्य हो जाएगा, सारा जगत जो है वैसे तो मेरे ऊपर भरोसा करता नहीं है, उनका वो कोई विश्वास नहीं मेरे ऊपर, थोड़ा भक्तों के ऊपर विश्वास है। प्रहलाद ने कह दिया, क्या कहा, ये स्तंभ में मैं हूं, अगर मैं इस स्तंभ से प्रकट नहीं हो जाऊंगा तो क्या होगा, सारा जगत भक्तों के ऊपर भी उनका विश्वास छूट जाएगा। इसलिए सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम, भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए वो आतुरता से, खंभ से वैसे का वैसे प्रकट हो गए, देयर वाज नो प्रिपरेशन, ठीक है जाएंगे प्रार्थना करेंगे, ठीक है मैं आ रहा हूं रुको, वो सब कुछ था नहीं, इमीडिएट, इट वॉज नॉट एट ऑल शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड मतलब क्या है, अच्छा ठीक है ये टाइम में प्रकट होंगे, ऐसा कुछ होता है कि भगवान जो है ये अष्टमी के दिन ऐसा, भगवान रामचंद्र का भी बड़ा इतिहास है कैसे प्रकट हुए, ये टाइम में प्रकट हो जाऊंगा, ये माता पिता के गर्भ में, इनका क्या माता पिता कौन है नरसिंहदेव का कोई कुछ नहीं, कैसे भी करके चलो, क्यों, क्योंकि मेरे भक्तों को संरक्षण करना है, भक्त वात्सलता है कि इसलिए ये श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, वो है अच्युत, भगवान ये न प्रहलाद अच्युतात्मता। तो श्रील विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं अच्युतात्मता अच्युतैक चित्तत्वम येन तदपि, वो बात की बात है, अच्युतैक चित्तत्वम, इनको प्रहलाद को क्या कहा गया है, अच्युतात्मना, क्यों कहा गया, क्योंकि उनका चित्त केवल अच्युत के यानी भगवान कृष्ण के प्रति ही आकृष्ट था, 24 घंटा केवल कृष्ण के बारे में स्मरण करते थे। तो ये भगवान को इधर अच्युत करके क्यों संबोधित किया गया है, इसका पूरा कनेक्शन मिलता है वो भगवद गीता में, जहां अर्जुन कृष्ण को संबोधित करते अच्युत के रूप में, रथम स्थापय में अच्युता, तो उस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं भगवान को इधर अच्युत करके क्यों संबोधित किया गया है, क्योंकि अर्जुन को मालूम था तब वो अपनी पदवी भगवत्ता को भी त्याग करने के लिए तैयार है। वैसे अगर सीधे अर्थ देखा जाए कि अच्युत मतलब जो अपनी पदवी से कभी गिरते नहीं है, यानी भगवान हमेशा भगवत्ता को बना के रखेंगे, लेकिन उसका व्याख्या करते हुए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं भगवान अपनी जो भगवत्ता को भी त्याग करेंगे, किसको बना के रखने के लिए, अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए। वैसे भगवान कौन है, त्रिलोकेश्वर है, लेकिन अभी अर्जुन ने क्या कहा, हे देखे जाओ मेरा रथ को, यानी अर्जुन को विश्वास था कि मेरा इज्जत को कबाड़ा नहीं करेंगे मैं जो बोलूंगा उसको सत्य बना के रखेंगे, ऐसा नहीं कि मेरा आज्ञा को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनको मालूम है मेरा उनका मेरा स्वभाव, क्योंकि प्रहलाद की वाणी को सत्य किया था, उनको सत्य बनाने के लिए वो कैसे अपने आप ऐसे कम से प्रकट हो गए, ये घोर रूप में प्रकट हो गए, तो अभी मेरा वाणी क्या है वो सेनयोर उभयोर मध्ये रतम स्थापया, ये जो वाणी है, ये जो शब्द है, उसको सत्य बनाने के लिए भगवान क्या करने वाले हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी एक ड्राइवर बनने के लिए तैयार है, ड्राइवर बनना मतलब क्या है, उतना हाई क्लास पोजीशन नहीं है, चलो ड्राइवर है ऐसा बोलेंगे, तो लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी भगवत्ता का पोजीशन है उसको त्याग करके ही बिकेम कंट्रोल्ड बाय द लव ऑफ हिज डिवोटीज। तो इसीलिए ये जो अच्युतम ये शब्द इधर इस्तेमाल किया गया है, व्हाई, बिकॉज क्योंकि नरसिंह अवतार में भगवान ने अपना नाम अच्युत है करके उन्होंने सत्य करके स्थापित किया है, ही इज अच्युत, व्हाई, बिकॉज ही प्रोटेक्ट्स द, ही नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिंग दिस डिवोटीज। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि वो कभी भी गिरते नहीं है, कौन सी स्थिति से गिरते नहीं है, अपने भक्तों को संरक्षण करने की स्थिति से कभी वो गिरते नहीं है। तो अभी ये श्लोक को थोड़ा सा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। को श्री युधिष्ठिर उवाचा, युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, दो प्रकार का प्रश्न है, ये दो प्रश्न इस प्रकार है। सबसे पहला है कि ओ माय लॉर्ड नारद मुनि, व्हाई वाज देयर सच एनिमिटी बिटवीन हिरण्यकशिपु एंड हिज बिलोव्ड सन प्रह्लाद। तो क्योंकि जैसे नारद मुनि ने शिशुपाल दंतवक्र हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का नाम वगैरह लिया तो तुरंत उनके मन में एक जिज्ञासा आई, अच्छा हिरण्याक्ष का लीला मैं पहले सुना हूं, ऐसा नहीं कि पहले सुने नहीं थे, युधिष्ठिर महाराज को ये पूरा लीला पहले मालूम था, तभी तो प्रश्न पूछा ना। तो उन्हें पूछा कि मेरा एक प्रश्न है, एक पुत्र है, कौन है, प्रह्लाद, हिरण्यकशिपु का एक पुत्र है, और इतना दुश्मनी क्यों बना के रखा, वाई ही हैड सो मच। ठीक है, हिरण्यकशिपु ने भगवान से दुश्मनी की, अलग बात है, क्योंकि भगवान ने अपने भाई को मारा तो वो अलग बात है, लेकिन अपना स्वयं पुत्र के साथ इतना द्वेष क्यों है, वाई वॉज हेटिंग हिज ओन सन, बिलॉड सन प्रह्लाद महाराज। दूसरा, हाउ डिड प्रह्लाद महाराज बिकेम सच ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, और ये हिरण्यकशिपु कौन है, एक असुर है, और असुर के पुत्र स्वाभाविकतः असुर होता है, लेकिन ऐसा कैसे प्रह्लाद महाराज इतना महान भक्त बन गए, हाउ डिड ही बिकेम सच ए ग्रेट डिवोटी, ये उनका दो प्रश्न था। तो इस प्रश्न के पीछे थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे ये श्लोक के अनुसार। विदेशितो दैते पुत्रे, आप सबको मालूम है कि विद्वेशो, विद्वेशो मतलब बहुत द्वेष, विद्वेश विशेष रूपेण द्वेष, विशेष तरीके से द्वेष था। तो ऐसा देखा गया कि पहले लोगों में द्वेष होता था शत्रुओं के साथ या चचे भाइयों के बीच में द्वेष देखा गया, लेकिन पिता अपने पुत्र के प्रति द्वेष करना ये इतिहास में कहीं नहीं है। This nowhere it has been seen like that. स्वयं पिता अपना पुत्र, इसलिए क्योंकि पुत्र को कहा गया है कि आत्मजा अपने स्वयं से उत्पन्न हुआ, पिता हमेशा पुत्र को देखता है, अपना ही समान देखता है, कि ये सोचता है कि मैंने जो नहीं किया है वो मेरा पुत्र करके दिखाएगा, और आनंद भी लेते हैं कि मेरा पुत्र कुछ किया तो अस्तित्व में उसने क्यों किया मालूम है, मेरा पुत्र है। तो कभी कभी पिताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि अपना पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है वो इतना खुश हो जाता है कि ताकि वो खुद किया है, तो इतना उनका ये रहता है, आसक्ति रहता है। तो ये जो है विद्वेषितो विशेष रूपेण द्वेषिता दैत्य पुत्रे, दैत्य मतलब अपना प्रिय, जो उनके प्रिय पुत्र, सत्य में देखा जाए प्रह्लाद को बहुत प्रेम करते थे हिरण्यकश्यप, used to love him like anything, अपने गोद में बिठाते थे, क्या क्या नहीं करते थे, तो इतना प्रिय पुत्रे, खत्म आसीन महात्मनी, हे महात्मनी, तो खत्म क्यों आसीन देरस महात्मनी, हे महात्मा, कौन है, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज महात्मा थे, महान आत्मा, क्यों कहा गया महात्मा करके, क्योंकि प्रह्लाद पूर्ण तरीके से भगवान का शरण लिए थे, कंप्लीटली टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को कहते थे कि महात्मानस्त माम पार्था, उस श्लोक की व्याख्या में ये महात्मा शब्द जो है केवल उन्हीं को संबोधित किया जा सकता है जिन्होंने भगवान कृष्ण का पूर्ण तरीके से शरण लिया है, महात्मानस्त माम पार्था दैवीं प्रकृति माश्रिता, लेकिन इसके अलावा बाकी सब लोग दुरात्मा है, लेकिन ये महात्मा नामक शब्द जो है उन्हीं लोगों को उच्चारण किया जाता है, लेकिन ये जो है अन्य लोगों को लगा के ये महात्मा शब्द को ही वो लोग ने नीचे गिरा दिया, ऐसा प्रभुपाद जी अलग अलग जगह कहते हैं। तो एनी हाउ, तो ये बड़े महात्मा थे, ब्रूही मुझे बताइए, मैं भगवान, जर नारद मुनि को भगवान करके संबोधित करते हैं। वैसे तो संबोधित करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि नारद मुनि भक्ति शक्ति का आवेश अवतार है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान करके संबोधित करना कोई दोष नहीं है उसके अंदर नारद मुनि को। ये न प्रहलादस्य अच्युत आत्मता, ये न प्रहलादस्य अच्युत आत्मता, तो ये उनका प्रश्न था। ऐसा कैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद से द्वेष करने लगे उनका प्रिय पुत्र होने पर भी, और दूसरा प्रहलाद को अच्युत भगवान के प्रति इतना आसक्ति कैसे उत्पन्न हुआ, दो प्रश्न हैं। तो आप देखिए इधर ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत निकलता है कि असुर लोग भगवान से द्वेष करते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान से प्रेम करने वालों के प्रति भी द्वेष करते हैं। दूसरे शब्दों में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को इधर प्रस्तुत किया जा रहा है पूरा इस प्रसंग में। भगवान ने शिशुपाल को माफ किया, सब कुछ किया, इतना असुरों का उत्पात था लेकिन फिर भी उनके प्रति सहन किया, लेकिन जब इन्हीं असुरों ने अपने भक्तों के प्रति रोष दिखाया तो भगवान वो सहन नहीं कर पाए। तो ये जो प्रश्न का संक्षिप्त जवाब पूरा ये है कि विदेशित विद्वेषितो दैत्य पुत्रे कथम आसीन महात्मनि, वो इतना पुत्र के प्रति क्यों द्वेष था कि असुरों का स्वभाव होता है, मेरा जो दुश्मन का जो मित्र है वो भी मेरा दुश्मन है, द फ्रेंड ऑफ माई एनिमी इज ऑल्सो माई फ्रेंड, और उसका और विपरीत लेंगे तो द एनिमी ऑफ माई फ्रेंड, मेरा मित्र का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और मेरा दुश्मन का जो मित्र है वो भी मेरा दुश्मन है। अभी उनका दुश्मन किसके प्रति था? भगवान कृष्ण के प्रति था। तो प्रहलाद महाराज वो कृष्ण के भक्त होने के कारण, यही हिरण्यकशिपु वो कृष्ण से द्वेष करते थे, भगवान से द्वेष करते थे, तो भगवान का भक्त होने के नाते वो प्रहलाद महाराज से भी उन्होंने द्वेष किया। और अंततः यही प्रहलाद महाराज, ये न ब्रूही में भगवान, ये न प्रहलाद चातुषात्मना, तो प्रहलाद महाराज को किस प्रकार उन्हें भक्ति प्राप्त हुआ वो भी मुझे कहिए, हाउ डिड ही गेट दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स टुवर्ड्स कृष्णा। तो इस श्लोक की तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि ऑल द डिवोटीज लॉर्ड कृष्णा आर कॉल्ड अच्युतात्मा बिकॉज दे फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रहलाद महाराज। अच्युत रिफर्स टू इनफैलिबल लॉर्ड विष्णु हूज हार्ट इज ऑलवेज इनफैलिबल because the devotees are attached to the infallible, they are called Achyutatma. Bhaktoon ko Achyutatma kyon kaha jata hai? Kyunki wo unko Bhagwan Achyut ke prati atyant asakti rehta hai. He's got unlimited devotion. To ye jo pura Prahlad aur Hiranyakashipu ka prasang mein humko ye bahut mahatvapurna cheez prapt hota hai. Prahlad Maharaj ka gun, the qualities of Prahlad Maharaj. To Bhagwan कृष्ण के प्रति उनका आसक्ति एक चित्त होने पर उनको सारे अच्छे गुण प्रकाशित हुए। अगर सच में कि भक्ति में अग्रसर होना चाहता है अस्तित्व प्रहलाद का चरित्र पढ़ना चाहिए। स्वयं उनका पिता ही उनको कितना तकलीफ दिया लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट गिव अप कृष्णस डिवोशन। क्यों? उनका कृष्ण के प्रति इतना आसक्ति होना, ही हैज सो मच अफेक्शन फॉर कृष्ण। तो एक भक्तों का भक्ति का जो परीक्षा है, परीक्षा ये है, परीक्षा क्या है? जितना भी तकलीफ हो लेकिन फिर भी हम कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये अनुभव किया गया है, जब भौतिकवादी तकलीफ में आता है तो भगवान के पास आता है, लेकिन जो नवदीक्षित भक्त होते हैं थोड़ा सा, जो जिनका भक्ति थोड़ा दृढ़ नहीं है, उनके जीवन में तकलीफ आता है तो भक्ति करना छोड़ देते हैं। लेकिन प्रहलाद के जीवन में इतना दुख आया, इतना तकलीफ आया लेकिन फिर भी प्रहलाद का जो दृढ़ता है, क्यों? अच्युतात्मना, ही वाज कंप्लीटली, उनका आसक्ति जो है कृष्ण के प्रति ऐसा था, श्री विष्णु ठाकुर के अनुसार अच्युत एक चित्तत्वम, अच्युतात्मना मतलब एक चित्तत्वम, उनके अलावा और कोई नहीं था। He had that एक चित्तत्वम, उनका पूरा चित्त जो कॉन्शियसनेस जो है कृष्ण के चरणों के प्रति ही लगा हुआ था, इसलिए उनको कहा गया अच्युत एक चित्तत्वम। तो इधर हम समाप्त करेंगे इनका ये जो दो श्लोकों का। तो कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछिए, नहीं क्वेश्चंस। इनका प्रश्न ये है कि ऐसे हमने सुना है कि शुद्ध भक्तों का ऐसा विचार रहता है, भले हम भगवान से दूर रहे लेकिन उनका गुणगान करते रहे, उनका भक्ति करते रहेंगे, तो ये हमारी वास्तविक स्थिति है। ऐसा क्यों है भगवान के जो ये जो दो पार्षद है जय विजय, वो भगवान का द्वेष करने के लिए तत्पर हो गए, भले ही तीन जन्मों के लिए क्यों ना हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जय विजय भगवान के पार्षद है और उनके सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन दे आर इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। अभी भौतिक जगत में जाना, भौतिक जगत में जाना और अपने भगवान की जो जो सेवा है, उनकी जो निहित सेवा है द्वारपाल, तो भगवान का द्वारपाल का जो सेवा है वो भौतिक जगत में प्राप्त नहीं होता उनको। हो सकता है कि ठीक है वो वॉचमैन बने मंदिरों में, वो भी जय विजय जैसा ही है, लेकिन उस प्रकार का जो स्थिति है उनको उधर प्राप्त नहीं होता है, नॉट हैपन। और दूसरी बात है, ऐसा नहीं कि प्रत्येक भक्त भगवान को एक ही प्रकार भाव के साथ सेवा करे, तो एक एक लीला में एक एक विशेष बात को उद्धृत किया जाता है। अस्तित्व में जय विजय का जो भी प्रसंग हुआ वो भगवान की योजना के अनुसार हुआ। मूल स्टार्ट हुआ भगवान का ऐश्वर्य, इनकी शक्ति, जिस किसी के पास भी कुछ भी होता है वो प्रकाशित करना चाहता है कि नहीं। मान हमारे पास ऐश्वर्य, में दिखाऊंगा सबसे महंगी गाड़ी लेके घूमूंगा, हर किसी अच्छा कपड़ा है तो अच्छा कपड़ा घूमूंगा, है कि नहीं। अगर कोई बुद्धि है तो बुद्धि प्रकाशित करता है, बल है तो बल को प्रकाशित करता है, कोई जिम्नेशियम जाता है तो उसका मसल वसल रखता है तो टी शर्ट पहन के ऐसे से घूमता है, कि नहीं, तो दिखाता है मैं कितना शक्तिशाली हूँ। और सबके ऊपर लॉर्डिंग करते हैं किसी को, और उनको और शक्ति को दिखाना होता है तो किसी से फाइटिंग करना होता है। अभी भगवान के पास सर्वशक्ति है और किसके ऊपर दिखाएंगे, वैकुंठ में तो सब ऐसे ही ऑलरेडी सरेंडर्ड है। तो अभी उनके अंदर जैसे बोला जाता है ना, किसी का बच्चे का थोड़ा सा शक्ति आता है तो हाथ में खुजली होता है, और उनको भी थोड़ा सा खुजली हो रहा था, तो उनको इच्छा होता है मैं किससे युद्ध करूं। तो जय विजय को ये मालूम पड़ा कि भगवान के अंदर ये इच्छा है, और ये इच्छा को कैसे पूर्ण करे करके उनका इच्छा हुआ, तो भगवान ने ये ऐसा योजना बनाया। वो योजना के अंदर एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, एक इट इज वन ऑफ द भावस। जैसे भक्ति के परिभाषा में नारद मुनि अपनी मंतव्य देते हैं, और पहले शांडिल्य गर्ग उनका मंतव्य देते हैं कहां, नारद भक्ति सूत्र में, तो बहुत प्रीति के साथ भगवान का पूजा करना ये भी भक्ति है कि नहीं। ये ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, लेकिन नारद मुनि अंततः कहते हैं कि तद विस्मरणेन व्याकुलत्वम इति भक्ति। भगवान की विस्मरण में व्याकुलता को अनुभव करना वो भक्ति है, वो जो है इन जय विजय को अप्लाई होता है। अस्तित्व में उनका उदाहरण के रूप में गोपियों का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार भगवान की विरह में वो एकदम व्याकुलता को अनुभव कर रहे थे। तो ऐसे जय विजय भी, अरे भौतिक जगत में जाना मतलब आपको भूल जाना, और इतना लंबा समय तक आपको भूल के नहीं रह सकते, तो इसीलिए वो व्याकुलता में वो लोगों ने इस प्रकार किया। और आगे के पहले के श्लोकों में नारद मुनि भी इस प्रकार उन्होंने स्तुति किया, क्या कहा, ये देखो इतने महान लोग हैं। क्यों महान है? क्योंकि भगवान का जो विरह है उनको उनको सहन नहीं हो पा रहा था। कुछ भी हो जाओ मैं आपके साथ आना चाहता, जितना जल्दी हो सके आपके पास आना चाहते। और उनके लिए भगवान का, जैसे आपको ये मालूम है कि वो कहानी है, भगवान को सरदर्द हो रहा था तो कंपटीशन हुआ पता करने के लिए कौन अच्छा भक्त है। तो बहुत सारे लोग गए कि भगवान ने कहा मेरा सरदर्द ठीक होना है तो क्या करना होगा, उनका मेरे भक्तों का चरण धूली चाहिए। तो अलग अलग लोगों के पास गए, किसी ने भी नहीं दिया, बोले चरण धूली अगर मैं दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन गोपियों के पास जब गए, ऐसा है क्या, ले लो जितना चाहे उतना ले लो, यानी भगवान को अपना चरण धूली उनके ऊपर डालने की, ये तो बड़ा चीज होता है। तो इस प्रकार की जो भाव रखना है कि नहीं, इट इज अगेंस्ट। उसी प्रकार भगवान का द्वेषी बनना भगवान की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, दिस इज स्पेशल सैक्रिफाइस। इस प्रकार का जो शरणागति है वो विशेषता है, इसलिए ये विद्वेषी तो लिखा है इधर, विद्वेष है, विशेष रूपेण द्वेष है, ये स्पेशल है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये साधारण चीज नहीं है। नहीं तो कैसे वैकुंठ लेके जाने के लिए भगवान वाहन भेजते हैं, वैकुंठ विमान है, ये सब सुना है। लेकिन आप कभी सुना है कि भगवान ने अपना ही शरीर को रथ बना के लेके गए? ये स्पेशलिटी, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, कौन? काल नेमी करके राक्षस था वो, उनका मुझे एग्जैक्टली पूरा इतना ये नहीं मालूम, आई डोंट नो द होल थिंग। काल नेमी करके ही वाज अफेंडर, वो उन्होंने अपराध किया था। हाँ तो हो सकता है, आई कैन नॉट कमेंट क्योंकि उसके बारे में कहीं पढ़ा नहीं। नहीं नैमिषारण्य नहीं, हरिद्वार, हरिद्वार के बाद सुत्ताल है, नैमिषारण्य में सुत्त गोस्वामी। हाँ नहीं, जय विजय वो भगवान के पार्षद है, लेकिन अभी वो लीला में क्या कर रहे हैं, वो एक रोल कर रहे हैं। क्या रोल कर रहे हैं? एक बद्ध, क्या कहना है, तो तमोगुण का हद है, तो भगवान को इतना निंदा करना, तो ऐसी अवस्था में वो थे। ही वाज एनएक्टिंग एज असुरा, एज डेमन। तो वो जैसे सुखदेव गोस्वामी है, वो जन्मतः मुक्त थे, वो जन्मतः मुक्त का ही वो स्वभाव प्रकाशित कर रहे थे। लेकिन भले ही जय विजय भगवान के पार्षद है, लेकिन जब इस दादाधाम में आए उन्होंने क्या किया, वो लोगों ने उन्होंने एक बद्ध अवस्था का जीव है, अति बद्ध अवस्था, इतना मतलब कि तमोगुण से आवृत अवस्था। हाँ, भगवान वैकुंठ धाम की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ये देखिए भगवान की योजना है, वैकुंठ में कहीं इस प्रकार का द्वेष रोष नहीं होता है। वही भगवान के पार्षद इस प्रकार कभी नहीं करते, इट विल नेवर हैपन। जब चार कुमार आ रहे थे, आने के पहले की बात ही समझ लीजिए कि ये दोनों चर्चा कर रहे थे, कौन है जय विजय। भगवान के मन में इच्छा है कैसे पूर्ण हो सकता है, हम कैसे पूर्ण करें। तब भगवान जैसे भक्तों के मन में इच्छा को सुनेंगे, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो भी प्लान बनाएंगे। भक्त लोग भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्लान बनाते, भगवान भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्लान बनाते, यही है परस्परम भावयन्ते ना। इस प्रकार ट्रांजैक्शंस होता है, यू मेक ए प्लान टू सैटिस्फाई कृष्णस प्लान, ही विल मेक ए प्लान टू फुलफिल योर प्लान. जैसे मान लीजिए अभी जन्माष्टमी आ रहा है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अभी आपको प्लान बनाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करें करें कुछ सब आप प्लान बनाएंगे. हमारा प्लान से कुछ होता है क्या? तो भगवान और एक प्लान बनाएंगे, है कि नहीं? तो ये इन लोगों का प्लान जो है उसको फुलफिल करने के लिए एक प्लान होना चाहिए, है कि नहीं? तो आपको ऐसे ऐसे लोगों को भेजेंगे आपके स्टॉल के पास. आप पूरा दिन भर खड़े तक कुछ एक भी किताब नहीं गया, दो दिन हो गया, दस दिन हो गया, खाली दस किताब गए. अचानक एक व्यक्ति आएगा, ठीक है आप, मैं 1000 किताब लेता हूं. तो ये भगवान का प्लान है. तो यू हैज टू ओनली डिजायर एंड ट्राई टू मेक सम प्लान. हमारा प्लान सब फेल होता है, भगवान का प्लान ही पास होता है. तो वो लोग सोच रहे थे कैसे करें भगवान के साथ इस प्रकार का, इनको संतुष्ट कैसे करें. तो भगवान ने चार कुमार, वो तो ऐसे घूम रहे थे तो आ गए वैकुंठ में, तो उनके हृदय में परमात्मा के रूप है कि नहीं भगवान? तो उन्होंने उनका स्मरण दिया कि आप आओ इधर. जैसे आए चार कुमार तो यही भगवान क्या किए, इनके इनके इसमें जय विजय के हृदय में वो लोगों ने उनको, अरे ये चार कुमार आ रहे थे उसको रोको. अभी चार कुमार कौन है? दे आर लिबरेटेड सोल्स. उनको आत्मारामस्त मुनियो निर्घंता विक्रमे, वो आत्माराम है. उनको शाप देने की प्रवृत्ति कहीं नहीं रहता. वैकुंठ में क्या कर रही है? कभी भी नहीं, ऑलवेज वेरी पीसफुल. ज्ञान शक्ति के आवेश अवतार लोगों ने शाप दिया, वहां भगवान आराम से है. लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ा कि कुछ हो रहा है उधर, वो बिना चप्पल पहन के लक्ष्मी जी भाग पीछे पीछे भाग के आई, और नारायण स्वयं भागते हुए आए. और उधर बहुत सुंदर प्रसंग है, इन दोनों के बीच में संवाद है. भगवान ये जो लीला है उसके द्वारा वो ब्राह्मणों का महत्व, वैष्णव अपराध सिद्धांत, और अंततः उनका जो स्वभाव है. क्या स्वभाव है उनकी? जो भक्तों का जो दोष है, गलती है, वो अपना करके मानते हैं. जैसे ये हर मैनेजर को सीखना चाहिए मंदिर के, इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलती करता है उनको ऐसा सोचना है उसका गलती नहीं है, मेरा है. भगवान ऐसा सोचते. वॉचमैन भी अगर मान लो किसी को कुछ गलत कर दिया तो दैट इज हाउ लॉर्ड सेज, वो सोचते है कि अरे मेरा आदमी गलती की तो मेरा गलती है. वो गुण को उन्होंने प्रकाशित किया. बहुत अद्भुत लीला है, सो वंडरफुल. अगर वो सुनेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड हार्ट ऑफ कृष्ण. पूछ तो आए. चित्रकेतु का प्रसंग कुछ और है और जय विजय का प्रसंग. भागवत में प्रत्येक प्रसंग एक विशिष्ट एक विशेष सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए है. चित्रकेतु का प्रसंग यह है कि सारे जगत को दिखाने के लिए कि अस्तित्व में वो जो पार्वती ने शाप दिया ये शाप उचित नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया. चित्रकेतु इतने महान थे, ही एक्सेप्टेड इट, उन्होंने शांति से स्वीकार कर लिया. ये जगत को दिखाना चाहते एक वैष्णव कैसा है. एक वैष्णव भले ही उन्होंने शाप को वापस, जैसे ना ईंट का जवाब पत्थर से, ये सिद्धांत होता है, तो चित्रकेतु वापस पत्थर से वापस शाप दे सकते थे पार्वती को, लेकिन उन्होंने किया नहीं. और इसके बाद वही चित्रकेतु बाद में असुर योनि में भी किस प्रकार भगवान की भक्ति किया जा सकता है, ये भगवान का और एक प्लान था. लेकिन जय विजय के लिए कुछ और प्लान है. कृष्णा डजंट हैव ओनली वन प्लान. कृष्ण का अनेकों प्लान्स है, देयर मेनी मेनी प्लान्स. ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रसंग में एक भक्त जो है एक ही प्रकार व्यवहार करे, है कि नहीं. He may react in different different ways according to the plan of Krishna. तो चित्रकेतु का वो अलग प्रसंग ही है. It is totally different thing. We should not connect these two things. There is no question of doing that. जय विजय भी उनका प्रसंग कुछ और है. प्लान तो मूल प्लान तो उनका शक्ति को दिखाना था. अगर ये लोग असुर नहीं बनेंगे किसके साथ झगड़ा करेंगे भगवान आके. That is the thing. ठीक है. हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ
हाँ देखिए ये भी जो उसके पीछे वाला प्लान कौन था क्या था. ये जो लोग तीन जन्म या सात जन्म उसके मूल प्लान ये था कि मैं उनको अपनी भगवान को जो ऐश्वर्य है उनका जो शक्ति है वो शक्ति को प्रकाशित करने के लिए सारे जगत को. तो कोई ना कोई भगवान को दुश्मन बनना चाहिए ना. यानी दूसरे शब्दों में अगर दिया जाए जय विजय ने भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनका दुश्मन का रोल भी निभाया. जैसे गोपियां अगर भगवान को संतुष्ट करने के लिए नरक भी जाना चाहती है तो ये जय विजय ने क्या किया भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनका दुश्मन का भी रोल निभाया. इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई असमंजस नहीं है. नहीं, उनका मूल क्या था. ये जो लीला में बैकग्राउंड देखेंगे उनका इच्छा क्या था. उनका बैकग्राउंड देखेंगे क्या था. जय विजय ये सब क्यों हुआ. शाप देना ये वो सब क्यों हुआ. उनका मूल क्या था. व्हाट वाज दैट इनहेरेंट डिजायर. जय विजय उनका क्या था मूल. कि हम भगवान की जो ये इच्छा है युद्ध करने का अपना ऐश्वर्य अपना शक्ति को प्रकाशित करने का ये इच्छा को पूर्ण करना. ये इच्छा वो कैसे पूर्ण होगा जब कोई ना कोई दुश्मन बनेगा, है कि नहीं. अगर इफ यू ये भागवत में नहीं है. इट इज नॉट इन भागवत. ये बताए इट इज नॉट इन द भागवतम. ये कोई अन्य पुराण में है. ये एग्जैक्टली मुझे क्लियरली बात नहीं मालूम लेकिन पुराण में है. दिस इन द पुराण ये कथन है. ये एक्चुअली भगवान ने नहीं दिया था. ये लोगों ने चित्र कुमार लोगों ने दिया. जब माफ किया था ना ठीक है इनको माफ कर दो तब उन्होंने दिया ठीक है आपको क्या चाहिए तब लोगों ने ये दोनों में ये चूज किया. हाँ देखिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार वर्णन किया जाता है. लेकिन ये जो प्रसंग है कि तीन जन्मों वापस आना इनका कि वापस आने की जो पीछे उद्देश्य क्या है. उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी भगवान के पास आ जाए. कोई भी लीला होता है जब अलग अलग जगह वर्णन होता है कि अलग अलग पॉइंट्स को उद्धृत करने के लिए होता है. यानी ये जो व्याकुलता है कि वापस में आपके पास आना चाहते हैं इसको दिखाने के लिए एक पुराण में ऐसा वर्णन किया है. तो उसपे कोई हानि नहीं उसके अंदर. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. हाँ इसे रोको, ये चीज नहीं है। हाँ वो बात भी है, उपदेश भी है, उपदेश भी है। हाँ वही ना, दैट इज द रीजन, ट्रू। हाँ दैत्य मतलब वो खुद भी तो है, अपने आप को महात्मा थोड़ी ना सोच सकता है। ठीक है, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।